नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की नॉन डिटेल टेक्स्ट बुक भारत की खोज का दूसरा अध्याय तलाश पढ़ेंगे। आपको पहले भी अध्यापक ने बताया होगा कि भारत की खोज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसमें जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है तलाश। आप सभी जानते होंगे कि तलाश का अर्थ क्या है। तलाश शब्द का शाब्दिक अर्थ है खोज, किसी चीज की खोज। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ होगा कि नेहरू जी किसकी तलाश करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने सबसे पहले भारत के अतीत की झांकी की। भारत की अतीत की झांकी कि भारत पहले क्या था, उसके उन्होंने खोज करनी चाहिए। इस तलाश के अंतर्गत 6 उपशीर्षक हैं, यानी सब हेडिंग 6 हैं। मैंने इस पाठ के 2 मॉड्यूल बनाए हैं। ये जो पहला मॉड्यूल जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस तलाश पाठ के 3 उपसर्गों को लेकर के मैंने एक मॉड्यूल बनाया। शेष जो 3 भाग हैं उनको मैंने दूसरे मॉड्यूल में दिया है जो आप आगे पढ़ेंगे। बच्चों, नेहरू जी ने इस तलाश पाठ के अंतर्गत 6 जो उपशीर्षक हैं, भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता, भारत की विविधता और एकता, जन संस्कृति। अब मैं एक एक का आपके समक्ष उस शीर्ष उपशीर्षक का सारांश प्रस्तुत करूंगा। आपको बहुत ध्यान लगा के सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पुस्तक तथ्यों के आधार पर है और उनको याद करना आपके लिए आसान तभी हो सकता है जब आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो पहला है भारत के अतीत की झांकी। नेहरू जी भारत के अतीत के बारे में सोचते हैं कि मेरे समय के भारत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो पाएंगे कि भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। भारत की अमरता को देखकर नेहरू जी के मन में ये विचार उठे कि आखिर ये भारत है क्या जो इसे इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका कोई इसकी नींव हिली नहीं। अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया है, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है, केवल विशाल जनसंख्या बसेरा बनकर के ही रह गया है, या जनसंख्या के अलावा कुछ इसके पास बचा ही नहीं जिसे हम जानदार कह सकें? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस प्रकार बैठता है? इन इतने विचार मन में होने पर भी नेहरू जी एक आलोचक के भांति भारत के अतीत का विश्लेषण कर यह जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का कारण क्या है। वे अतीत के पसंद व नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। उन्होंने भारत के अतीत को जानने के लिए देश का निरीक्षण किया। क्या किया? देश का निरीक्षण। उन्होंने सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों को देखा, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। यहाँ एक प्राचीन और पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप में टिके रहने का कारण ठेठ भारतीयपन है, और यही आधुनिक सभ्यता का आधार है। नेहरू जी ने विचार करते हुए ये सोचा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने परिवर्तन और विकासमान रहकर भी कोई संस्कृति या सभ्यता 5-6 हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। जबकि भारत की सभ्यता और संस्कृति पर बहुत प्रभाव रहा है। समय समय पर यहाँ विदेशी फ्रांस, चीन, मिस्र, ग्रीस और अरब और भूमध्य सागर के अनेकों लोग बराबर यात्री आते रहे हैं, और वे उन्हें उन्हें भारत उन्हें प्रभावित करता रहा और उनसे भारत प्रभावित होता भी रहा। लेकिन फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। अब नेहरू जी के मन में सवाल उठा कि इस मजबूती का रहस्य क्या है। इसका पता लगाने के लिए उन्हें भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ना शुरू किया। जो विद्वान यात्री चीन, पश्चिम व मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने वह साहित्य लिखा था। नेहरू जी ने उत्तर में खड़े पहरेदार के रूप में हिमालय पर्वत और उससे जुड़ी अनेक कथाओं, दंत कथाओं को जानने का प्रयास किया। उन्हें देख करके उनके विचारों और साहित्य को बहुत बहुत दूर तक प्रभावित किया। नेहरू जी ने कहा है कि पहाड़ों से मुझे अत्यधिक प्रेम था। कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। हिमालय पर्वत की गोदी से निकलने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा नदियों ने उन्हें प्रभावित किया। इंडस और सिंधु नदी के आधार पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। भारत के अतीत की कहानी को रूप देने वाली अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, आगरा और दिल्ली में बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। क्योंकि ये जो इमारतें हैं, गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में बने हुए चित्र हैं, एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं, उनसे भारत के अतीत की नेहरू जी को जानकारी हुई। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने शहर इलाहाबाद या हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए हैं गंगा स्नान पर्व पर, विशेष रूप से विदेशियों के लिए भी आकर्षण का कारण बना हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हैरियत इस बात की है कि इनके अंदर कौन सा ऐसा आकर्षण है और कौन सी ऐसी ताकत है जो इतने वर्ष बीत जाने के बाद अनगिनत पीढ़ियों से भारत के इस प्रसिद्ध नदी की ओर खिंचाव रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये पर्व जो थे आज भी भारत के अंदर मनते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, यहाँ पर जो कुंभ के जो मेले लगते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आस्था रहते खींचे चले आते। नेहरू जी कहते हैं कि इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसने धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। बनारस के पास सारनाथ में गौतम बुद्ध को पहला उपदेश देता देखा। अशोक के पाषाण स्तंभ व शिलालेख अशोक की महानता को प्रकट करते हुए आज भी खड़े हैं। इस प्रकार नेहरू जी की यह देश के प्रति जो भावना बनी उससे उन्हें एक सजीव भारत और सजीव भारत की झांकी साफ स्पष्ट और वर्तमान के धरातल पर प्रतीत हुई। जो हजार वर्ष पुराना जो भारत का अतीत है उसको समझ पाने में वे सफल हुए। भारत के अतीत की झांकी का अवलोकन कर नेहरू जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है और इतने हिचकोले खाने के बावजूद भी इसका महत्व सदा बना रहेगा। जब पूरी अतीत की झांकियों का वर्णन करने के पश्चात उनका ध्यान भारत की शक्ति और सीमा की तरफ गया, उसका अवलोकन करने की एक जिज्ञासा मन में पैदा हुई, क्योंकि किसी भी देश की जो शक्ति है वह शक्ति ही देश को महान बनाती है। और शक्ति कौन सी शक्ति? विज्ञान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। ये शक्ति जो है ये मानव के ज्ञान से उत्पन्न होती है। विज्ञान यदि अपनी चरम तरक्की करता हुआ नजर आता है तो देश की शक्ति बढ़ती है। उन्होंने देखा कि हम भारत तकनीकी के दौड़ में यूरोप से पीछे पिछड़ रहा है। फिर उन्होंने उसके शक्ति के जो स्रोत थे और उनके पतन के कारणों की खोज करनी आरंभ की। वो खोज लंबी और उलझी हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने पता लगाया कि तकनीकी के विकास के पीछे विज्ञान की चेतना होती है। तकनीकी विकास पर ही यूरोप ने सैन्य बल बढ़ाया और पूर्व पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने देखा कि भारतीयों में मानसिक सजगता, तकनीकी कौशल की कमी हो रही। हो रही थी। लोगों में आगे बढ़ने की लालसा और परिश्रम करने की जो इच्छा थी वह कम हो रही थी। नित्य नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुसरण कर रहा था, यानी नकल कर रहा था। प्रकृति व ब्रह्मांड भेदने वाला भारत कार्यों में कमजोर पड़कर साहित्य रचना की ओर उन्मुख हो रहा था। उसकी तरफ उनकी इच्छाएं बढ़ रही थी। साहित्य और काव्य भी कुछ हद तक देश की शक्ति हैं, परंतु उन्होंने काव्य और साहित्य भी इतने जटिल और अलंकारों से युक्त भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे काव्य और साहित्य भी बहुत कठिन हो गए और आम जनता की समझ से बाहर पड़ गए। इस काल में भारत नवीन खोजों की बजाय अंधविश्वासों और संकीर्ण रूढ़िवादिता में फंसता जा रहा था। वह गतिहीनता और जड़ता की ओर बढ़ने लगा। महासागरों को पार न करना, मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ जाना, यह देखकर नेहरू जी को भारत की जो शक्ति थी उसके प्रति विश्वास डगमगाने की बजाय अडिग रहा। उन्होंने सोचा कि ये फिर से शक्तिशाली बन सकता है और उन्होंने अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि अभी तक भी भारत की दृढ़ता और मजबूती बनी रही है और बनी रहेगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञान की शिक्षा, तकनीकी विकास की दौड़ के लिए नए नए आयाम शुरू करने होंगे। इतना सब होने के बाद नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने तलाश करनी शुरू की कि भारत क्या है। नेहरू जी कहते हैं कि इसका पता लगाने के लिए मैंने पुस्तकों, प्राचीन इमारतों, भवनों, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों से को देखकर भी मेरे मन में एक समझ तो पैदा हुई, लेकिन उन सब से मुझे संतोष नहीं हुआ और ने मैं जिस उत्तर की तलाश में था, उत्तर की तलाश, भारत की तलाश, वह मुझे नहीं मिला। इस बीच मेरा ध्यान भारत के गांवों की तरफ गया। देश के अंदर तीन वर्ग विद्यमान हैं, गरीब, गरीब किसान वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग। मध्यम धनी वर्ग तो हमेशा से अंग्रेजों का ही समर्थक रहता था, क्योंकि अंग्रेज उन्हें अपने पक्ष में लेकर के ही इतने वर्षों तक अपने कारनामे को अंजाम देते रहे, जिसको आज़ाद कराने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। गरीब वर्ग जिसमें ज़्यादातर किसान थे, मजदूर वर्ग था, उसे किसी से कुछ इतनी समझ नहीं थी। उनका काम केवल अपना पेट भरना, अपनी आजीविका कमाना, उसी में व्यस्त वो रहते थे। मध्यम वर्ग जो अंग्रेजों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, मध्यम वर्ग ही देश को आज़ाद कराने की सोचता था। मध्यम वर्ग को ही अंग्रेजों के अधीन रहकर घुटन हो रही थी और वे ही देश को आज़ाद कराने की सोच रहे थे। नेहरू जी का ध्यान ग्रामीण जनता की ओर गया, भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो गांवों में निवास करता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग को देख करके उन्हें एक भारत लगा कि ये बुद्धिजीवी वर्ग ही इस देश को आगे बढ़ाएगा। भारत की ग्रामीण जनता नेहरू को सदा अपनी ओर आकर्षित करती रही। ग्रामीण अभावों में रहते हुए भी भारत की शान थे। गांवों ने प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को कुछ अंशों में अभी भी बचा कर रखा है। अर्थात जो प्राचीन संस्कृति है वो गांवों में आज भी बची हुई है। अतः भारत की जो असली झलक है वह गांवों में ही मिलती है। इस प्रकार नेहरू जी को भारत कहाँ मिला? गांवों में झलक मिली कि गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इनको साथ आगे बढ़ाने से भारत उन्नति कर सकता है। तो ये तलाश के तीन उपशीर्षक, भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, इन तीनों उपशीर्षों को का सारांश जो मैंने बताया वे शायद आपकी समझ में आया होगा। और इस उम्मीद के साथ मैं इन तीन उपशीर्षकों का वाचन जो है वो बंद करता हूँ। धन्यवाद।